There are some things which Jesus specifically pointed when he spoke about the last days.
और जब अंतिम दिनों में यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में बात किया तो कुछ चीजों को यीशु ने खास निर्देश उसकी ओर किया.
In Matthew chapter 24,
मत्ती उसका 24 अध्याय,
verse 4,
उसका 4 वचन.
Jesus answered and said to them, see to it that no one misleads you.
और यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमाने पाए.
So one thing which Jesus asked just to be careful is that nobody should misguide us.
और यीशु मसीह ने एक सावधानी बरतने के बारे में कहा कि कोई भी तुम्हें भरमाने ना पाए.
For in verse 5 it says, for many will come in my name saying I am Christ and will mislead many.
पांच वचन, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे.
So when Jesus was saying that, he was saying as a first person.
और यीशु मसीह जब इस बारे में कह रहा है तो पहला व्यक्ति जो कह रहा है उस प्रकार वो कह रहा है.
For example, if I am saying many will come in my name and say I am Danny, that means Jesus is Christ. They are not saying that I am Christ. They are saying that these people are saying that Jesus is Christ.
और ये पहला व्यक्ति, इसका मतलब है कि मैं अगर ऐसा कह रहा हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग आएंगे और कहेंगे कि डैनी है वो, ये परमेश्वर का जन है वो, यीशु मसीह खुद परमेश्वर ऐसा कहेंगे.
So it means these people are not claiming that they are Christ.
और ये जो लोग खुद अपने आप को नहीं मान रहे हैं कि मैं खुद मसीह, ऐसा वो नहीं कहेंगे.
But they are saying that Jesus is Christ.
लेकिन वो ये कहेंगे कि यीशु मसीह है, वो प्रभु है.
That means they are taking the name of Jesus and saying and they are preaching and but they are misleading many.
और वो यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं लेकिन बहुत लोगों को भरमा रहे हैं.
So that is the type of thing we need to be very careful about.
और ऐसी सारी चीजों के बारे में बहुत ही हमें सावधान रहना है.
Because there is more danger for us when some person says I am Christ, Jesus is Christ, than somebody who says I am Christ.
और ये बड़ा खतरा है कि जो यीशु मसीह, उसके लिए बहुत ही खतरनाक है जो ये कहता है कि मैं खुद मसीह हूं उसके बजाय कि यीशु मसीह प्रभु है.
नो, सो देयर आर पीपल हु क्लेम टू बी क्राइस्ट, दैट आई एम क्राइस्ट.
और कुछ लोग ऐसे घोषणा करते कि मैं खुद मसीह हूं.
फॉर वी आर नॉट इन डेंजर ऑफ बीइंग डिसीव्ड बाय देम.
और उनसे हमें कोई खतरा नहीं, उससे हमें कोई हमें भरमा नहीं सकता.
बट इफ समबडी सेज जीसस इज क्राइस्ट,
लेकिन अगर कोई ऐसा यदि कहता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है,
एंड देन ही कैन से something and do something which can mislead us.
और उसके बाद वो जो कुछ ऐसा कहेगा या करेगा जिससे वो हमें भरमा सकता है.
Because we tend to believe somebody who takes the name of Jesus.
क्योंकि हम लोग जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं उसके ऊपर विश्वास करने की ज्यादा कोशिश करते हैं.
But we have to test everything which is happening in the world today.
लेकिन संसार में आज जो कुछ भी हो रहा है उसको हमको परखना है.
And it is for our safety.
और ये हमारी सुरक्षा के लिए है.
In 2 Thessalonians,
दूसरा थिस्सलुनीकियों
chapter 2,
दूसरा थिस्सलुनीकियों के दूसरा अध्याय,
from verse 9 we'll read,
नौ वचन से आगे.
It says, that is the one whose coming is in accord with the activity of Satan, with all power and signs and false wonders.
और अधर्मी का ना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ.
So the activity of Satan has powers, signs, wonders and false miracles.
और शैतान के जो सारे कार्य होते हैं या उसके सारे कामों के अंदर झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम पाए जा सकते हैं.
If I am only waiting for this excitement and all these miracles and all these things, if I am very excited about it, there are chances that I'll be deceived.
और हो सकता है कि अगर मैं बहुत ही उत्साही या बहुत ही आतुर होता हूँ सारे चमत्कार और सारी दिखावे प्रभावी बातों के ऊपर, तो हो सकता है कि इन सारी बातों से मैं भरमाया जा सकता हूँ.
Our focus should not shift from Jesus to all these things.
और हमारा जो ध्यान है यीशु मसीह से हटकर और सारी ये चीजों के ऊपर नहीं जाना चाहिए.
And it says, with all the deception of wickedness for those who perish, because they did not receive the love of the truth so as to be saved.
दस वचन, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता.
So I just give an example. If there are two people,
मैं उदाहरण देता हूँ कि यदि दो व्यक्ति यहाँ है,
one person who is claiming and has done lot of miracles and healings and lot of things,
और एक व्यक्ति जो ये बहुत घोषणा करता है कि उसने बहुत सारे अद्भुत कामों को किया, चमत्कारों को किया है,
But one person who can speak the truth and the word of God which convicts me of my sin.
लेकिन दूसरा व्यक्ति है वो परमेश्वर के सत्य को इस प्रकार बोल सकता है कि जिससे मुझे पाप का बाद बोध होता है.
Is my heart more attracted to a person who can do miracles and wonders and signs than a person who reveals my true condition of my heart?
और जो मेरे हृदय की जो सच्ची दशा को दिखाता है उस व्यक्ति से बढ़कर क्या जो चिन्ह चमत्कार करने वाला व्यक्ति उसकी और ज्यादा मैं आकर्षित होता हूँ.
So if I am that way, there is a danger that ahead I can be deceived.
और यदि मैं इस प्रकार आगे जा रहा हूँ तो मेरे लिए आगे धोखे दिए जाने के लिए भरमाए जाने के लिए मेरे लिए खतरा है.
Because I don't love the truth.
क्योंकि मैं सत्य से प्रेम नहीं करता.
I love these external things and excitement.
और ये बाहरी जो चीजें चिन्ह चमत्कार ये जो प्रभाव करने वाली बातें उनसे मैं प्रेम करता हूँ.
And in verse second Corinthians.
दूसरा कुरिन्थियों.
Chapter 11.
उसका 11 अध्याय.
It says in verse 13.
13 वचन में.
For such men are false prophets, deceitful workers, disguising themselves as apostles of Christ. And verse 14. No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light.
क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले. 14. और यह कुछ अचंभे की बात नहीं क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है.
So there are many false teachers and false prophets which have come into the world.
और बहुत ही ऐसे धोखा देने वाले शिक्षक है वो सारे इस संसार के अंदर आ चुके हैं.
एंड दे विल नॉट से एनीथिंग रॉन्ग इन देयर डॉक्ट्रिन.
और उस सिद्धांत के रूप में कोई भी वो गलत नहीं कुछ बोलेंगे.
बट इन वर्स 12 द लास्ट पार्ट it says the, in the matter about which they are boasting, that means they will be so boastful about what they are doing.
और वो जो सारी चीजें जो जानते हैं उसके अंदर बहुत ही घमंड करने वाले लोग होंगे.
So if there is someone who is very boastful,
और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा घमंड करता है,
and he is trying to project himself,
वो हमेशा अपने आप को ही दर्शाना चाहता है,
and he has a spirit of exalting himself,
और उसके अंदर ऐसी आत्मा है जो खुद को ऊपर उठाना,
he does not have the spirit of Christ,
तो उसमें यीशु मसीह का आत्मा नहीं है.
We have to make sure that we don't get that spirit.
और हमें ये ध्यान देना है कि हम वो आत्मा प्राप्त न करें.
Because if I admire him and if I follow him and if I listen to him, I'll get that spirit.
और यदि मैं उसकी बहुत ही तारीफ करूंगा ऐसे व्यक्ति का उसका अनुसरण करूंगा तो वो आत्मा मेरे अंदर भी आ जाएगा.
And in the last days there is lot of deception.
और अंतिम दिन में बहुत सारे ऐसे ठग करने वाले और धोखा देने वाले होंगे.
And it is more difficult to find true word of God than it is very easy to find false prophets.
और सत्य वचन से ज्यादा बहुत बड़ी आसानी से जो झूठे जो प्रबोधक या जो ये प्रचार करने वाले बड़े आसानी से मिल जाते हैं.
It is found in very plentiful in these last days.
और इन अंतिम दिन में बहुत ही अधिक मात्रा में हम प्राप्त ऐसे लोगों को प्राप्त कर सकते हैं.
It is very difficult to find true word of God.
और बहुत ही कठिन हो जाता है कि जो हम सत्य के वचन को प्राप्त कर सके.
And this word of God is like my food.
और ये प्रभु का वचन जो है मेरे एक भोजन के समान है.
इफ आई ईट अनहेल्थी फूड एंड आई ईट एनीथिंग व्हिच आई फाइंड आई विल नॉट बी हेल्दी स्पिरिचुअली.
और अगर मैं ऐसा कोई भी भोजन करूंगा जो अस्वास्थ्यकारक है ठीक नहीं है तो आत्मिक रीति से मैं स्वस्थ नहीं बनूंगा.
आई नीड टू बी केयरफुल व्हाट आई लिसन टू.
और मुझे बहुत ही ध्यान देना है कि मैं किन बातों को सुन रहा हूँ.
इफ आई लिसन टू ऑल दीज थिंग्स एंड इट फिल्स माई हार्ट एंड माइंड आई विल बी डिसीव्ड.
और ये अगर मैं इन सारी बातों को सुन रहा हूँ मेरे मन को हृदय को इन सारी बातों से भर रहा हूँ तो मैं भरमाया जाऊंगा.
आई विल नॉट बी फोकस्ड on actual things which is required for godliness.
और ये ईश्वरीय जीवन के लिए जो सारी चीजें जरूरत है उन चीजों के ऊपर मेरा ध्यान मैं शायद नहीं लगा पाऊंगा फिर.
In 2 Timothy,
दूसरा तिमोथी,
chapter 3,
तीसरा अध्याय,
verse 5,
उसका 5 वचन.
It says, holding to a form of godliness, although they have denied its power, avoid such men as these.
वचन 5 में भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे ऐसो से परे रहना.
So it is talking about the last days.
ये अंतिम दिनों के बारे में बात कर रहे हैं.
So they have a form of godliness.
और वहाँ पे भक्ति का एक भेष है.
That means they are preaching all right things.
और इसका मतलब कि वो जो सही चीजें उन चीजों का प्रचार कर रहे हैं.
And they do not have the power. That means there is no life in their in them.
और उनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं. इसका मतलब कि उनके अंदर कोई जीवन नहीं है.
That means what they are projecting and what they are living are two different things.
इसका मतलब कि जो वो दर्शा रहे और जो जीवन वो जी रहे वो दोनों में बहुत ही अंतर है.
And word of God does not say it's okay if you just talk to them and be friendly with them.
और वचन में लिखा है कि इसका ये मतलब नहीं कि उनसे बातें करो उनके साथ संगति वो ठीक रहेगा ऐसा नहीं.
It says avoid such men as these.
और यहाँ पे लिखा है ऐसे लोगों से हमको दूर रहना है.
सो आई नीड टू टेक दिस वर्ड सीरियसली दैट इफ आई एम लिसनिंग टू सच पीपल आई हैव टू अवॉइड देम.
और मुझे बहुत ही ध्यान से इस वचन को लेना, अगर ऐसे लोगों को मैं अगर सुन रहा हूँ तो उनसे मुझे दूर रहना है.
इफ आई कीप लिसनिंग टू इट आई विल गेट दैट स्पिरिट स्लोली इन टू माई हार्ट.
और यदि मैं बहुत ही निरंतर इन बातों को ऐसे प्रचारकों को सुनता रहूंगा तो धीरे धीरे करके वो आत्मा मेरे अंदर वो आ जाएगा.
So let us heed the word of God and take this seriously.
और बहुत ही ध्यान से वचन के परमेश्वर के वचन को ले और उसका उसको हम ले ले.
And second thing which Jesus spoke in Matthew 24.
और मत्ती 24 के अंदर यीशु मसीह ने कहा.
Verse 12.
मत्ती 24 उसका 12.
He says because lawlessness is increased, most people's love will grow cold.
और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा.
So it is talking about the love which I had for Christ and for others.
और ये प्रेम जो यीशु मसीह के लिए और औरों के लिए जो प्रेम है उसके बारे में यहाँ बात कर रहा है.
Here it says love of most people will grow cold.
और यहाँ पे लिखा है बहुतों का प्रेम जो है वो ठंडा हो जाएगा.
When it says love will grow cold, that means once they had the love for Jesus.
और बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा इसका मतलब एक दिन एक समय पर उनके पास पर यीशु मसीह के लिए प्रेम था.
That means that there was a hot burning love for Jesus at one time.
और एक समय पर परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति एक बहुत जलने वाला बहुत ही गर्म ऐसा प्रेम उनके अंदर था.
But slowly due to some reasons that love has grown cold.
लेकिन धीरे धीरे कुछ कारणों के वश उनका जो प्रेम है धीरे धीरे ठंडा होता गया.
So I need to check my heart, Lord, is my heart the cold, is there a cold attitude towards you or with any other brother or sister?
और मेरे अपने आप को हृदय को जांचना है कि प्रभु मेरे अंदर ऐसा कोई जो मेरा जो प्रेम है आपके प्रति या मेरे भाई बहनों के प्रति ठंडा है.
Every day this is the thing I need to check in my heart.
और प्रतिदिन मेरे हृदय के अंदर इस बात को मुझे जांचना है.
It doesn't matter what the other person did.
और इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले मनुष्य ने मेरे साथ क्या किया है.
My heart should go love should not grow cold.
और मेरा जो प्रेम उसके प्रति कभी ठंडा नहीं होना चाहिए.
I should not have a cold attitude towards any brother or sister.
और किसी भी भाई और बहन के प्रति मेरा ठंडा ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए.
Because one who endures to the end, he will be saved.
क्योंकि आगे लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा.
So if I endure in love till the end, then only I can be saved.
और प्रेम के अंदर अगर अंत तक मैं उस व्यक्ति के प्रति धीरज धरे रहता हूँ तो ही मेरा उद्धार होगा.
And in third thing which Jesus spoke.
तीसरी बात जो यीशु मसीह ने कहा.
He says in verse 38.
उसके 38. 24 के 38 वचन में.
For in those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day Noah entered the ark.
और 38 वचन क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा पर उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी.
So is there anything wrong with eating and drinking?
और क्या खाने पीने में क्या कोई गलत बात है?
Is there anything wrong in marrying and giving in marriage?
और उन ब्याह में शादी करना या लेना शादी करना उस बारे में कुछ गलत बात है?
There's nothing wrong in that.
और इसमें कोई गलत नहीं है.
But why does the word of God says that they were eating and drinking, marrying and giving in marriage?
और क्यों परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी?
Because their whole life was based on this earth.
क्योंकि उनका पूरा जीवन जो है ये पार्थिव या संसारिक जो चीजें उनसे ही ग्रसित थी.
सो इफ माय होल हार्ट एंड माय माइंड इज ऑक्यूपाइड विद दिस वर्ल्ड एंड दिस थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द वरीज एंड एवरीथिंग दैट डे विल कम एज अ स्नेयर टू मी.
और हो सकता है कि मेरा यदि मेरा मन है और मेरा हृदय है उन संसार की सारी चीजों से अगर हमेशा भरे रहेगा तो ये सब कुछ मेरे लिए एक फंदे के समान आ जाएगा.
बिकॉज जीसस सेज व्हेन आई एम कमिंग माय हेड शुड बी अप.
और यीशु मसीह ने कहा जब मैं वो आता है तो मेरा जो सिर ऊपर होना चाहिए.
That means Jesus saying that if my head is down and looking at all the earthly things all the time and my eyes are always looking at earthly things, I cannot look up.
और यदि अगर मेरी आंखें मेरा सर है जो संसार की सारी चीजों के ऊपर देखने में व्यस्त है तो मैं ऊपर नहीं देख पाऊंगा.
एंड I cannot expect Jesus to come when I'm always occupied with the world.
और जब मैं संसार की सारी बातों से ग्रसित रहूंगा तो मैं ये अपेक्षा नहीं करूंगा कि यीशु मसीह आए.
In Luke 21:34.
लुका 21
34 34 इट सेज बी ऑन गार्ड दैट योर हार्ट्स विल नॉट बी वेटेड डाउन विद डिसिपेशन एंड ड्रंकननेस एंड द वरीज ऑफ लाइफ दैट द डे विल नॉट कम ऑन यू सडनली लाइक ए ट्रैप.
और इसलिए सावधान रहो ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नए अचानक आ पड़े.
हियर टॉक्स अबाउट द हार्ट बीइंग वेटेड डाउन बाय डिसिपेशन एंड ड्रंकननेस.
और यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन है, उनसे सारी चीजों से सुस्त हो जाए.
हार्ट बीइंग ड्रंकन.
और यहाँ पे हमारा हृदय जो है वो मतवाला हो जाता है.
इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉडी बीइंग वी पुट अल्कोहल इन माय बॉडी.
और ये हमारे शरीर के बारे में नहीं बताया कि जहाँ पर हम शराब या ऐसे मादक पदार्थों को हमारे शरीर में डालते हैं.
बट इन द हार्ट देयर इज ड्रंकननेस.
लेकिन हमारे हृदय एक शराबी की तरह मतवाला हो जाता है.
दैट मींस आई एम ड्रंक विद द वरीज ऑफ दिस लाइफ.
इसका मतलब संसार की सारी चिंताओं से मैं मतवाला हो जाता हूँ.
एनीथिंग आई डू इन एक्सेस एंड आई एम वरीड अबाउट इन एक्सेस. That takes captures my whole life and my whole being.
और कोई भी चीज़ें जब मैं करता हूँ उससे बढ़कर मेरा जो चिंता है या मेरा पूरा व्यक्तित्व को वो पूरी तरह से ग्रसित कर लेता है.
In dissipation means over indulgence.
और मन खुमार से भर जाना मतलब हम एक क्षमता से या जरूरत से ज्यादा उस चीज में अपने आप को डाल देते हैं.
एनीथिंग विच आई इंडल्ज इन मोर देन रिक्वायर्ड.
और जितना जरूरत है उससे ज्यादा मैं अपने आप को उसके अंदर डाल देता हूँ.
इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट्स एनी सिनफुल थिंग.
और हो ये जरूरी नहीं है कि वो सारी पाप में चीजें ही होगी.
इफ आई एम मोर एनग्रोस्ड इन सम थिंग्स विच आर नॉट सिनफुल.
और ऐसी हो सकती है बहुत ऐसी चीजें जो पाप में नहीं लेकिन उसके अंदर मैं बहुत अधिक उसके अंदर मैं बहुत ही व्यस्त हूँ या अपने आप को उसके अंदर डाले रखा है.
Way that my heart gets drunk with that.
और इस तरह के मेरा हृदय पूरी तरह से उससे मतवाला हो चुका है.
It might be some good politics which I want to see, but if my heart gets drunk with that, then I cannot expect God, Jesus to come back.
और हो सकता है कि वो कोई अच्छा पॉलिटिक्स हो सकता है लेकिन मेरे हृदय को पूरी तरह से उसके मतवाला कर दे तब मैं अपेक्षा नहीं कर सकता कि यीशु मसीह आए.
It might be some good things which I want to see, but if I'm drunk with that, if my whole life and my time is wasted on that, then I cannot expect Jesus to come.
और यदि हो सकता है अच्छी चीजें देखने के द्वारा मैं मेरे मन को मेरे हृदय को पूरी तरह से ग्रसित करूंगा तब मैं उसको उसके आने की मैं अपेक्षा नहीं कर सकता.
Then that day will come as a trap.
और उसके बाद वो दिन तुम्हारे ऊपर फंदे की नहीं अचानक आ पड़ेगा.
That's why I am also struggling with this.
और मैं भी इन चीजों के साथ संघर्ष करता हूँ.
That day should not come. That every day I have to be ready. That I should not engross myself in something so much that I do not have the expectation of Jesus coming.
और मैं मेरे जीवन के अंदर किसी भी चीज के अंदर इतना अपने आप को ग्रसित न कर दूं ताकि यीशु मसीह के आने के दिन के लिए मैं तैयार न हो पाऊं.
It might be worries of this life.
और हो सकता है जीवन की सारी चिंताएं ये सारी हो सकती
हैं. It might be some office pressure which is there.
और ऑफिस के दफ्तर के अंदर कुछ दबाव प्रेशर हो सकता है.
But I should not be engrossed in that.
लेकिन मैं अपने आप को उसके अंदर पूरी तरह से अपने आप को ग्रसित नहीं करना है.
We know that in the battle of Gideon.
और हम गिदियोन के उस युद्ध के बारे में जानते हैं.
That God finally when he selected.
और जब परमेश्वर ने अंत में जब उन लोगों को चुना.
Some people who put their head in the water and try to drink.
और कुछ लोगों ने क्या वो पानी के अंदर अपना मुख डाल के उसको पानी को पीने की कोशिश की.
एंड सम पीपल जस्ट लैप्ड लाइक डॉग्स.
और कुछ लोगों ने कुत्ते के समान अपने जीभ से ही उस पानी को चाटा.
सो सम पीपल आर पूरी फुली एंग्रोस्ड इन दैट.
और कुछ लोग थे वो पानी पीने के अंदर पूरी तरह से ग्रस्त हो गए थे.
बट सम पीपल जस्ट लिक्ड एंड वेंट.
और कुछ लोग हैं केवल अपने जीभ से ही उसको पीने उन्होंने पानी पिया.
सो माय एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड इज जस्ट आई नीड नेसेसरी थिंग्स टू जस्ट लिव.
और मेरा भी स्वभाव इस संसार के प्रति इस प्रकार होना चाहिए कि जो चीजें जीवन के लिए जरूरत है उन्हीं चीजों को मैं लूं.
एंड माय फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन द क्राइस्ट.
लेकिन मेरा ध्यान जो हमेशा है यीशु मसीह पर ही लगा रहे.
सो दैट इज हाउ आई कैन प्रिवेंट माय हार्ट फ्रॉम बीइंग ड्रंक.
और इस प्रकार मेरे हृदय को मतवाला होने से मैं रोक सकता हूँ.
These are the three things we need to avoid.
और इन तीन चीजों को हमें इससे बचना है.
One is deception.
और पहला है कि भरमाए जाने से.
Second is heart going the hatred in the heart or love growing cold.
और हमारे हृदय के अंदर जो प्रेम परमेश्वर या लोगों के प्रति ठंडा नहीं होना चाहिए.
And third thing is this drunkenness with this worries and this world.
और तीसरी चीज जो संसार और ये संसार की सारी चीजें चिंताओं से जो हमारा हृदय मतवाला हो उससे हमें बचना है.
And some things which we need to do.
और कुछ चीजें जो हमें करना है.
One is written in Luke 21:36.
और लूका 21:36 में लिखा है.
But keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to that are about to take place and to stand before the son of man.
और इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो.
I need to be alert.
और मुझे हर समय जागते रहना है.
And I need to spend time in prayer.
और मुझे प्रार्थना करने में समय को बिताना है.
If I don't spend time in prayer, I cannot escape these things.
और यदि मैं प्रार्थना करने में समय नहीं बिताता, उन सारी चीजों से मैं नहीं बच सकता.
That means I need to have that one-to-one connection with Jesus, and I spend time and I pour out my heart and I get strength in my heart from Him.
और एक-एक होकर मेरा और यीशु मसीह के साथ एक संबंध होना चाहिए, जब मैं अपने हृदय को उंडेलता हूँ, एक समय को निकालकर उसके साथ एक होता हूँ.
Any time I have that communication with Jesus.
और कोई भी समय में यीशु मसीह के साथ एक वार्तालाप कर सकता हूँ.
Whether it is in the daytime or any time God wakes me in the night, do I have that communication to come talk to Jesus and get strength from Him?
और कभी भी, चाहे वो दिन का समय हो या नींद के समय, रात में कभी मैं उससे वार्तालाप करके उससे वो सामर्थ को या बल को प्राप्त कर पाता हूँ.
Because I don't have strength in myself.
क्योंकि मैं अपने आप में कोई बल या ताकत नहीं रखता हूँ.
I can fall very easily.
और मैं बहुत आसानी से गिर सकता हूँ.
I can fall any day.
कोई भी दिन मैं गिर सकता हूँ.
That is why I need to go to Jesus again and again.
और इसी कारण मुझे यीशु मसीह के पास बार बार जाना है.
And second thing is in Hebrews chapter 12.
इब्रानियों 12
and verse 14.
उसका 14 वचन. इब्रानियों 12 14.
It says, pursue peace with all men and the sanctification without which no one will see the Lord.
और सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा.
So, one thing which says here is pursue peace with all men.
और यहाँ पे लिखा सब लोगों के साथ मेल मिलाप या शांति बनाए रखे.
So, I have to pursue something.
और मुझे किस चीज की खोज करना है.
That means if I have to make an effort to be at peace with all men.
और इसका मतलब मुझे कुछ प्रयत्नों को करना है ताकि सबके साथ में मेल मिलाप के साथ रह सकूं.
If there is a tension between someone, I need to make that effort to make peace with that person.
और यदि हमारे पास हमारे यार किसी और के बीच में कोई संघर्ष है कुछ संबंध के अंदर, तो मुझे प्रयत्नों को करना है मेल मिलाप करने के लिए.
इन जॉन 3:21
पहला यूहन्ना 3:21
it says beloved if our heart does not condemn us we have confidence before god.
हे प्रिय, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है.
So every day I need to ensure that my heart does not condemn me about anything.
और प्रतिदिन मुझे यह ध्यान रखना है कि मेरा मन, मेरा हृदय किसी भी चीज के लिए मुझे दोषित न करे.
That's how I can look up.
और इसी प्रकार मैं ऊपर देख सकता हूँ.
That means any time God Jesus is coming, I have to be ready for that.
इसका मतलब कोई भी समय यीशु आ सकता है और मुझे उसके लिए तैयार होना है.
And it also says that we have to pursue sanctification.
और यहाँ पर और भी लिखा है कि हमें शुद्धिकरण का है उसको उसके पीछे चलने का यत्न करना है.
When we talk about holiness or purity,
और जब हम पवित्रता और शुद्धता के बारे में बात करते हैं,
there is always two sides to it.
और उसके दो भाग हो सकते हैं.
We'll just read in 1 John.
पहला यूहन्ना
3
तीसरा अध्याय
2 and 3
उसका 2 और 3 वचन.
बिलवर्ड नाउ वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड हैज नॉट अपीयर्ड येट व्हाट वी विल बी येट वी नो दैट व्हेन ही अपीयर्स वी विल बी लाइक हिम बिकॉज वी विल सी हिम जस्ट एज ही इज एंड एवरीवन हु हैज दिस होप फिक्स्ड ऑन हिम purifies himself just as he is pure.
और हे प्रिय, अभी हम परमेश्वर की संतान है और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है. जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है.
So these are two things we need to take heed to.
और दो चीजें जिसके लिए हमको सावधान रहना है या उसको ध्यान देना है.
One is God purifying us.
एक ये है कि परमेश्वर जो मुझको शुद्ध या पवित्र करता है.
And second is we purifying ourselves.
और दूसरा ये है कि हम अपने आप को पवित्र या शुद्ध करते जाते हैं.
So I cannot take one and ignore the other.
और मैं एक चीज को लेके दूसरों को मैं उसको या नजरअंदाज करूं, ऐसा नहीं हो सकता.
There is a working with God and with our cooperation.
और ये परमेश्वर और हमारे दोनों के सहयोग से ये कार्य आगे बढ़ता है.
That means I cannot purify myself alone.
और इसका मतलब मैं अपने आप को खुद अपने आप को पूरी तरह से पवित्र नहीं कर सकता.
God has to work in me.
परमेश्वर को मेरे जीवन में काम करना है.
But at the same time when God works in me,
और वही समय जब परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है होता है,
आई नीड टू हम्बल माई सेल्फ एंड से लॉर्ड आई एग्री दैट टू व्हाट यू से दैट देयर इज समथिंग इन माय हार्ट दैट नीड्स टू बी प्यूरिफाइड,
और तब मुझे अपने आप को नम्र बना के परमेश्वर से कहना है प्रभु मैं सहमत हूं कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसी कोई चीज है जिसको निकाल कर मुझे प्रभु पवित्र होना है,
एंड आवर लाइफ शुड नॉट बी ए वन व्हिच इज स्टैग्नेंट एंड रिमेनिंग एट वन प्लेस,
और हमारा जीवन ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि एक स्थिर हो जाए, एक ही जगह पर हमारा जीवन खड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए,
आई नीड टू मेक प्रोग्रेस in my purification
aur mere pavitra ya shuddhikaran ke jeevan ke andar mujhe aage ki aur badhti karna hai,
I need to find out areas where I did not find sin till today
aur mujhe aise kshetron ke mere jeevan mein khojna hai ki jahan tak abhi tak maine paap ki khoj nahi kiya hai,
for example in philippians chapter 2
philippians 2 adhyay
and verse 12
philippians 2 12
and 13 it says so then my beloved just as you have always obeyed not in my presence only but now, much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure.
So, hey, mere pyaro, jis prakar tum sada se agya mante aaye ho, vaise hi ab bhi keval na mere saath rehte hue, par vishesh karke ab mere dur rehne par bhi darte kaapte hue, apne aap ko uddhar ka karya pura karte jao, kyunki Parmeshwari hai, jisne apni swichha nimit tumhare man mein ichha aur kaam, dono baate karne ka prabhav dala hai.
So, it is God who works in me.
और वो परमेश्वरी है जो मेरे भीतर काम करता है।
God works in me to give me a desire to repent and come to Him।
और परमेश्वरी है जो मेरे अंदर वो पश्चाताप या मन फिराने की इच्छा और उसके पास आने की इच्छा देता है।
But when He shows me something,
लेकिन जब वो मेरे जीवन में कुछ दिखाता है,
am I working it out with fear and trembling?
और क्या मैं बहुत भय के साथ थरथराते उन चीजों के अंदर काम कर रहा हूँ?
It is not that I just see and I just relax।
और ऐसा नहीं कि वो जब दिखाता है उस चीज को देखकर मैं बहुत ही आराम से बैठे रहता हूँ।
There should be a fear and trembling in my heart।
और मेरे हृदय के अंदर एक डर या ये कांपना होना चाहिए।
For example, if God shows me that your attitude towards that brother is not good,
और यदि परमेश्वर मुझे दिखाता है किसी भाई के प्रति मेरा व्यवहार ठीक नहीं है,
How is my reaction?
और तब मेरी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए?
Is it that I cannot rest, Lord? Let that attitude change and make it the attitude of Christ in me. Do I have that cry in my heart?
और ऐसी पुकार मेरे जीवन में है कि जब तक कि मैं उस भाई के साथ ठीक व्यवहार नहीं करता, तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा इस प्रकार।
If God shows me that my attitude in the sexual area is not pure,
अगर मेरा जो जीवन है, जो यौन संबंधित जो पाप या उन बातों के अंदर ठीक नहीं है,
It's not that I still sin externally.
और ऐसा नहीं कि मैं बाहरी तौर से पाप शायद नहीं कर पा रहा,
बट इन माय हार्ट एंड इन माय एटीट्यूड एंड इन माय मोटिव्स देयर इज सिन स्टिल देयर इज सम इंप्यूरिटी इफ गॉड शोस मी,
और यदि परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर ऐसी कोई जो कोई भावना है या ऐसा कोई विचार है, ऐसी कोई चीजें पाई जाती है जो परमेश्वर दिखाता है,
हाउ इज माय हार्ट्स क्राई,
और तब मेरे हृदय का पुकार कैसा होता है,
हाउ इज देयर ए फियर एंड ट्रेम्बलिंग और डू आई थिंक दैट इट्स ऑल सेटल्ड आई एम गोइंग टू हेवन,
और या क्या डरते कांपते उन बातों को लेता हूं या फिर ऐसे आराम से बोलता हूं कि मैं तो स्वर्ग की ओर जा रहा हूं।
In Corinthians, first Corinthians, second Corinthians.
Dusra Corinthio.
Chapter 3.
Tisra adhyay.
Verse 17 and 18.
17 aur 18 vachan.
But the Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image. From glory to glory, just as from the Lord, the Spirit.
प्रभु तो आत्मा और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं।
So this is also a work which God and we do it together.
और ये एक ऐसा कार्य है जो परमेश्वर और हम दोनों साथ में मिलके काम करते हैं।
So we see the face of Jesus, we see how glorious he is and how loving he is and how pure he is. We see his face.
और हम यीशु मसीह के चेहरे को देखते कितना प्रेमी वो है, कितना शुद्ध है और कितना दया से भरा हुआ वो है।
And God gives us a desire to be transformed into that image.
और परमेश्वर हमें एक इच्छा देता है ताकि उस प्रतिमा के अंदर हम बदल जाए, रूपांतरण हो जाए।
And more I see some areas which I could not see before.
और जो क्षेत्र पहले मैं शायद नहीं देख रहा, अधिक और अधिक उन क्षेत्रों को मैं अपने जीवन में देख पाऊं।
I see that there is sin in me.
मैं देख पाता हूं मेरे पाप जीवन के अंदर पाप है।
But I don't get discouraged. I come again and again that Lord, you transform me. This is the promise you have for me.
लेकिन उससे मैं निराश नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के पास मैं आता हूं, प्रभु ये तेरा वायदा है, मैं निराश नहीं होऊंगा।
I don't give up.
मैं वहां पर निराश नहीं मानता।
That's why in verse 4, chapter 4, verse 1, it says, Therefore, since we have this ministry as we have received, we do not lose heart.
और दूसरा कुरिन्थियों 4:1 में लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते.
We do not lose heart because we believe that He is the one who transforms us.
और हम यह इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम विश्वास करते कि वही है जो हमारे हृदय को बदलता है.
And when He shows us the sin, we don't lose heart.
और जब वो पाप को हमें दर्शाता है तब हम हियाव नहीं छोड़ते हैं.
We come to him and we believe that he will transform us.
उसके पास आते हम विश्वास करते कि वो हमको रूपांतरित करेगा.
And in 1 Thessalonians,
पहला थिस्सलुनीकियों
5:23, it talks about the complete sanctification.
और यहाँ पर पूर्ण शुद्धिकरण के बारे में बात करता है.
It says, now may the God of peace himself sanctify you entirely.
शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे.
And may your spirit, soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ.
और तुम्हारी आत्मा प्राण देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे.
Faithful he who calls you and he also will bring it to pass.
तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा और वह ऐसा ही करेगा.
And this is a promise which we can hold on to.
और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा जिसको हम ले सकते हैं.
As we work out our salvation.
और जैसे हम अपने उद्धार के कार्य को करते हैं.
It is not that I will become completely like Christ by my working with him.
और मेरा जो सहयोग है मेरे कामों से पूरी तरह से मैं संपूर्ण रीति से उसके समान नहीं बन जाऊंगा.
Maybe I will only transform little bit.
और हो सकता है मैं थोड़ा थोड़ा करके बदलूंगा.
But as I am transforming, one day Jesus will come in the clouds.
और जब यीशु मसीह उस बादलों पर आएगा तब मैं पूरी तरह से उसके समान परिरूपांतरित हो जाऊंगा.
And finally, when we see Jesus, it is not dependent on my sanctification that I see Christ.
और जब मैं अंत में यीशु मसीह को देखूंगा तो मैं उसको अपने शुद्धिकरण के कार्य के आधार पर नहीं देखूंगा.
It is not hoping in my sanctification.
और मेरा जो शुद्धिकरण पवित्रकरण उस पर आशा लगाकर नहीं देखूंगा.
It is that God is going to complete that which is lacking in me.
और परमेश्वरी है जो मेरे अंदर जो कमी घटी उसको वो कार्य को संपूर्ण वो करेगा.
That's why it says that God of peace himself will sanctify you completely.
और इसे कहता है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे.
And my spirit, soul and body will be blameless.
और मेरा जो आत्मा प्राण देह है वो पूरी तरह से निर्दोष हो जाएगा.
And that is why we are not sanctifying ourselves without will I get it, will I make it. No, we know that the finally what is there God is already doing, God will always do it.
और हम अपना शुद्धिकरण इस प्रकार नहीं कहते कि क्या को मैं प्राप्त कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, लेकिन वो शांति का परमेश्वर अंत में हमको पूरी तरह से पवित्र करेगा.
बट माई जर्नी इज टूवर्ड्स दैट.
लेकिन मेरा जो सफर है उस दिशा की ओर आगे है.
That's why in 1 John 3:3
पहला यूहन्ना 3:3 में लिखा है,
एवरीवन who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure.
और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है.
So it is not a purification without any hope.
और ये ऐसा पवित्रकरण या शुद्धिकरण नहीं आशा के बिना का नहीं.
If there is no hope that God will do something in the final day, then all our purification is empty, dead work.
और अगर ये अंतिम दिन में हमें ये आशा नहीं कि परमेश्वर ऐसा कुछ कार्य करेगा तो हमारे सारे शुद्धिकरण के काम जो है वो मृत कार्य होंगे.
It will be a work of the law.
और वो जो है व्यवस्था के काम हो जाएंगे.
एंड देयर विल बी नो फ्रूट फॉर दैट.
और उसके अंदर कोई फल नहीं होगा.
बट इफ माय कंप्लीट डिपेंडेंस इज दैट ऑन द फाइनल डे ही विल मेक मी लाइक जीसस.
और अंतिम दिन के अंदर मुझे पूरे निर्भरता यीशु मसीह के ऊपर इस प्रकार है कि वो मुझे यीशु के समान बनाएगा.
देन आई प्यूरिफाई माइसेल्फ इन दैट डायरेक्शन.
और तब मैं उस दिशा के अंदर अपने आप को पवित्र करता जाऊंगा.
एंड देन आई डू नॉट लूज हार्ट.
और तब मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा.
आई हैव God working inside me.
और मेरे पास वो परमेश्वर जो मेरे जीवन में काम कर रहा है.
It says if God is for us, who can be against us?
यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है?
Satan cannot condemn me.
और शैतान मुझे दोषित नहीं ठहरा सकता.
And I can always go before God in whatever situation I am in.
और कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो मैं परमेश्वर के पास उस हालात में जा सकता हूँ.
May God help us.
प्रभु हमारी मदद करे.
Thank God for the words God spoke to us. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की है.
As brother was saying about lawlessness will increase.
और जैसे कि भाई ने बताया कि मतवालापन जो है वो और बढ़ेगा.
So when it speaks about lawlessness, I believe it speaks about sin.
और मतवालापन के बारे में जब वो यहाँ पे जब बताया गया है वो पाप के संबंधित में है.
And when lawlessness increases, love will grow cold.
और वो जब मतवालापन जब बढ़ता जाता है वो जो प्रेम जो है वो कम होते जाता है.
एंड व्हेन जीसस इज लव इट इज जस्ट नॉट जस्ट लव इट इज लव फॉर जीसस दैट लव फर्वेंट डिवोशन टू जीसस.
और जब प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम के बारे में बात करते हैं वो जो प्रेम है प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेम है और पूरी तरीके से उसके लिए है.
सो व्हेन द होली स्पिरिट शोज मी सम sin in me, that is lawlessness is in my heart and I don't work it out, the love automatically will go out from my life.
Aur jab pavitra adharm aur jab pavitra atma mujhe mere andar wo jo agar adharm jo baatein hai mere andar agar dikhata hai to mera jo hriday agar usko nahi dekhta hai to fir wo thanda hone lagta hai.
When the light of God, when the Holy Spirit, as we heard in that Corinthians verse, that the Spirit reveals Jesus to us more and more.
और जैसे कि हमने देखा कि जो पवित्र आत्मा जो है उस चीज को प्रकट करता है और बड़ा तरीके से दिखाता है हमारे उस गलती को.
And the areas where I am not like him, there are so many things in me. That time, what is my reaction? That's what brother said.
और जैसे कि जो जो जगह में जो जो क्षेत्र में मेरा मेरा जो जो चीजें हैं ठीक नहीं है वो क्या है मुझे देखना है.
Then do I work it out? Do I tell God, Lord, it is true, I don't have that love in my heart.
और क्या मैं उसके ऊपर काम करता हूँ और परमेश्वर को बोलता हूँ कि हाँ प्रभु सच है मेरे अंदर वो सच्चाई नहीं है.
Jesus, I am not able to forgive and really forgive from the heart this person.
और ये मैं परमेश्वर को बोलता हूँ कि मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ उस व्यक्ति को मेरे मुझसे नहीं हो पा रहा है.
I don't want to put a show in the church that I am okay, but in my heart there is something different.
और कलीसिया में मैं ऐसा एक दिखावा नहीं करना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर हृदय में मेरा जो अंदर और कुछ चल रहा है.
As long as I am open before God of my condition, whatever he shows me, that till that time I am safe and there is no condemnation.
और जो भी तरीके से परमेश्वर दिखाता है मुझे और उस चीज को ऊपर जब मैं काम करता तब तक मैं सेफ हूँ.
If I try to hide and justify myself or say that let that person take the first step, then I am in danger and I'll be deceived.
और जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं ठीक हूँ मेरे अंदर कोई गलती नहीं है और वो व्यक्ति को उस कदम उठाने दो तो इसका मतलब मैं गलत हूँ और मैं एक डेंजर सिचुएशन में
हूँ. One of the verse that brother took below it is written that let there be no root of bitterness that springs up.
और जैसे कि एक वचन जैसे कि भाई ने बताया कि हमारे अंदर जो कड़वाहट का जड़ ना हमारे अंदर बना रहे.
इफ आई अलाउ दैट रूट टू ग्रो इट विल बिकम सच अ बिग ट्री दैट इट विल बिकम सो मच बिग दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू रूट इट आउट देन.
और अगर उस जड़ के लिए मैं स्थान देता हूँ तो फिर वो इतना बड़ा हो जाएगा फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा.
सो इट्स ऑलवेज गुड टू व्हेन द रूट इन द रूट इटसेल्फ आई क्राई आउट टू गॉड, लॉर्ड आई डोंट वांट दिस बिटरनेस, आई वांट टू फॉरगिव एंड लव दैट पर्सन.
और जब वो जड़ के समय में मैं उस समय में परमेश्वर को पुकारता हूँ और उसको निकालना चाहता हूँ और परमेश्वर को बोलता हूँ मुझे क्षमा करना है, मुझे वो आत्मा देना.
सच अ पर्सन, इफ आई एम सच अ पर्सन, आई विल हैव अ बिग प्रोग्रेस इन माय लाइफ 100%.
और ऐसा एक व्यक्ति में बनता हूँ तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा एक तरक्की मेरे
जीवन में होगा. There will be lot of, we will see the change in us as we grow each day. We will see the change if we are honest and if we want a real is a hunger in our heart that I don't want this sin in me.
और मेरे अंदर अगर वो प्यास रहेगा कि मेरे अंदर वो बदलाव चाहिए तो हम देखेंगे कि बहुत बड़ा एक बदलाव हमारे जीवन में आने लगेगा.
एंड
हम पाप नहीं करना
चाहते. एंड एज वी हर्ड दैट इट इज अ लिविंग होप दैट वी हैव, इट इज नॉट अ डेड थिंग दैट आई डू समथिंग विथ माय लाइफ एंड देयर इज नो नथिंग इन द आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, देयर इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू.
और ये हमारे अंदर जो एक मृत्यु भरा एक आशा ने एक जीवित आशा है जो मैं कुछ करने की कोशिश में हूँ, मैं उसमें लगा हूँ.
That living hope that I will see my savior one day, I will see him as he is.
वो एक जीवित आशा है कि मैं मेरा परमेश्वर को देखूंगा जैसा वो है वैसा मैं उसे देखूंगा.
And when I have that hope, then I will purify myself. It is after the hope is there in my heart, then only I will work out.
और जब ये जीवित आशा जो है मेरे हृदय को शुद्धिकरण करने का जो आशा मेरे अंदर रहता है तो वो आशा मुझे बनाती है.
I should never work out my own salvation without having that hope first in my life.
और इसके बिना मैं अपने जीवन के ऊपर उस आशा के बिना मैं अपने जीवन में कार्य मुझे नहीं करना है.
If I don't have that real hope, I can cry out to God, Lord, give me that living hope in me that I will see you one day.
और अगर मेरे अंदर अगर वो जीवित आशा नहीं है, मैं परमेश्वर को पुकारूं और कहूं कि मुझे वो जीवित आशा देना जैसे कि मैं उसको पाऊं.
I can be as simple as that. I don't want to, like, if there is some not there, something is not there, I can tell God, Lord, I don't have, he's my father, he knows my heart's condition. And if I come honestly before him, I don't have this, and I have this problem, I have this sin in me, he is ready to cleanse me and help me.
एक साधारण तरीके से जब मैं मेरे पिता के पास जाता हूँ, मेरा पिता है, वो कभी मना नहीं करेगा, और मैं जब उसको सच्चा हृदय से मैं मांगता हूँ, वो मुझे साफ, मुझे वो देगा.
In fact, he will love a person who is honest and who wants to change.
और वो सचमुच में उस व्यक्ति से प्रेम करेगा जो बदलना चाहता है और जो सच्चा हृदय से रहना चाहता है.
If I see my love has grown cold, I'll tell God, Lord, I don't have this fervent devotion to you, Lord. Give me that love in my heart. Fill my heart with the love of God.
और अगर मेरा प्रेम और ठंडा गिर जाता है, मैं परमेश्वर से मांगू तो परमेश्वर मुझे वो प्रेम देना ताकि वो ठंडा ना पड़े.
God is more than eager to fill us with the Holy Spirit.
और परमेश्वर जो है इतना उत्साहित है कि हमें वो पवित्र आत्मा से भर सके.
I want to be keep the faith constantly, never to give up.
और मुझे उस विश्वास को बना रखा है, कभी मुझे छोड़ना नहीं.
And God will finish the work he has started in our lives.
और परमेश्वर ने कार्य जो शुरुआत किया उसे अच्छी तरीके से भी खत्म करेगा.
प्रेज द लॉर्ड. एक छोटा स्टोरी मैं सुना था, एक प्रचारक ने बोला था कि ये वो एक जगह पे बहुत जो वो हेन का छोटा बच्चा, चिकन था बहुत सर ऐसा, तो एक ईगल का बच्चा उसके बीच में था, तो वो कैसा तो उधर गिर गया, शायद वो अंडा कैसा ऐसा सोचता कि वो पूरा स्टोरी मेरे को याद नहीं है, वो अंडा उसके बीच में आ गया और हेन चिकन सब अभी बच्चा हो गया, उसके बीच में भी ये ईगल का बच्चा भी जिंदा हो गया. सब लोग ऐसा ही, चिकन सब ऐसा ही नीचे देखे चल रहे, ऐसा ही ये ईगल का बच्चा भी ऐसा ही इसके बीच में चल रहे. तो एक्चुअली वो ईगल का बच्चा है, पर उसको खुद मालूम नहीं है कि वो ईगल का बच्चा है और उसको ऊपर तक सोच सकता है, ऊपर तक फ्लाई कर सकता है. वो कभी नहीं सोचता है, वो कभी क्या अभी ऐसा क्या सोचता है कि वो चिकन का बच्चा है बोल के वो उसके बीच में ही चल रहा है. मैं भी मेरा जिंदगी में ऐसा ही देख रहा था कि आज ही वो ऐसा सुना, वो पृथ्वी के बारे में सोच के नीचे ही देख के मैं भी चल रहा हूँ. मेरे को भी एक्चुअली परमेश्वर है हमारे साथ में, वो भी इतना एहसास नहीं हो रहा है परमेश्वर कितना बड़ा है, वो भी मालूम नहीं पड़ रहा है. वो समझ के मैं भी ऐसा ईगल का जैसा, मैं परमेश्वर भी हमको वो ही दे रहे, वो उत्साहन दे रहे कि तुमको मैंने पैदा किया है, तुम मेरा बच्चा है, तुम इसका ऊपर तुम फ्लाई कर सकता है. पर मैं हमेशा वो पूरा जो चिकन है इधर, वो चिकन को देख के अरे मैं भी ऐसा ही बोल के मैं भी ऐसा ही बैठा हूँ. पर मैं ऐसा ईगल का बच्चा है सो समझ के मैं भी फ्लाई करना चाहता हूँ. पर आप लोग मेरे लिए प्रे कीजिए. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ईगल का बच्चा है वो समझने के लिए, वो प्रभु मेरे को थोड़ा थोड़ा समझाने का ये दे रहे. तो प्रेयर कीजिए ताकि मैं भी फ्लाई करूँ प्रभु का हिसाब से, प्रभु क्या करूँ, प्रभु क्या करना सोचता है उस हिसाब से. धन्यवाद.
यह आने के लिए बहुत प्रभु का सामर्थ्य चाहिए. प्रभु को धन्यवाद. पिछले दिनों मुझे बस अय्यूब के बारे में ही परमेश्वर सिखा रहा है कि अय्यूब का जीवन कैसा था, कितने उसके ज़िंदगी में तकलीफें थी, कष्ट थे, कितना सब कुछ होके भी सब कुछ उसका ख़त्म हो गया. ऐसा क्यों हुआ? अय्यूब तो इतना ख़राब व्यक्ति था, परमेश्वर के लिए जीने वाला नम्र व्यक्ति था, फिर भी परमेश्वर ने ऐसा उसके जीवन में क्यों होने दिया? तो वहाँ मैंने एक चीज़ सीखा कि उसके अंदर एक चीज़ की घटी थी, वो था उसके अंदर एक आत्मिक घमंड. तो हम भी हमारे जीवन में बहुत बार हमें अपने आप को जांचना है, क्या मेरे अंदर वो आत्मिक घमंड है क्या? अब ये हम कैसे जांच सकते हैं? ये मैंने भी सीखा है किसी और के द्वारा. हम बहुत बार दूसरों का न्याय करते हैं, दूसरों के फैमिली के बारे में जज करते हैं, अरे वो फैमिली में ऐसा हो रहा है, वो उसके बच्चे ऐसे हैं, उसके बच्चे सही नहीं हैं. इसका मतलब मैं उस फैमिली से अच्छा अपने आप को समझती हूँ, इसका मतलब है ये आत्मिक घमंड है. तो हमें परमेश्वर जब ये सिखाता है, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया अय्यूब 23:10, उसमें लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू कैसे तेरे काम क्या है, तू क्या काम करता है. तो परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है. हम अय्यूब पढ़ेंगे, अय्यूब 23:10 वो कहता है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा. तो हमारे परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि वो हमें एक खरा सोने के समान बनाना चाहता है। अभी खरा सोना है, हम कैसे परखेंगे? एक सोनारी उस सोने को परख सकता है कि वो खरा है या नकली है। तो इसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमें एक सोने के समान बनाना चाहता है, और हमारे जीवन में तरह तरह की परिस्थितियों के द्वारा, तकलीफों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाता है। जब हम अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, और जब हम नम्र और दीन होकर परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर हम पे दया करता है, और हम पूरे हृदय से अपने आप को उसको समर्पण करना है, उसको सौंपना है, पश्चाताप करना है, प्रभु ये पाप मेरे अंदर है, मैं अपने आप को दूसरों से बहुत अच्छा समझती हूँ। हम एक बाइबल में एक उदाहरण देखते हैं कि दो व्यक्ति जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, एक अपने आप को बोलता है मैं उपवास करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, दशवांश देता हूँ, लेकिन हम उस दूसरे व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि वो परमेश्वर के ऊपर सर उठाकर भी उसके नहीं पुकारता है। तो क्या मैं उस तरीके का हूँ क्या? मेरा जीवन ऐसा है क्या? हम ये तरीके को हम जब सोचेंगे तो हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे। और दूसरा एक चीज़ मैंने अय्यूब के जीवन से सीखा कि जब अय्यूब के जीवन में कष्ट आया, तकलीफ आया, तो उसके दोस्त आके उसको बहुत टॉर्चर करते हैं, उसको क्या क्या बताते हैं, तो अय्यूब उन चीज़ों को लेकर बहुत दुखी होता है। तो मेरे जीवन में भी ऐसे ही हुआ है कि जब मैं परेशान थी, दुखी थी, बहुत समय पहले मैं बीमार थी, तो मुझे भी किसी ने आके बताया, अरे अपने आप को जांचो, आपके अंदर अभी भी कुछ तो पाप है। तो उस समय मुझे बहुत दुख लगा कि यार मैं इतना बीमार हूँ, इतनी तकलीफ में हूँ, और ये व्यक्ति आके मुझे बोल रहा है अपने आप को जांचो। तो फिर मुझे तुरंत अय्यूब की आगे वचन में हमने पढ़ा कि अय्यूब के मन में भी वही आया। अय्यूब बोलता है यदि यही विपत्ति तुम पे आती और मैं तुमको आके ऐसा कहता तो आपको कैसा लगता। लेकिन प्रभु ने वहाँ मुझे सिखाया और मैंने खुद को जांचा, मैं शायद ज़रूर मेरे अंदर कुछ पाप है, जब भी मैं ठीक नहीं हो रही तभी मुझे कोई दवा या कुछ भी असर नहीं हो रहा है। फिर मैं निरंतर प्रभु के वचन लेके बैठने लगी। फिर प्रभु ने मुझे भजन संहिता 34 का 12 से वचन दिया, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक और अपने मुंह की चौकसी कर, उससे छल की बात ना निकले, बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जब भी हमारे ज़िंदगी में अगर कोई हमारे एल्डर्स हो सकते हैं, हमारे चर्च के भाई बहन हो सकते हैं, हमारे घर में हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, अगर हमें करेक्शन करते हैं या हमें हमारे कुछ गलती दिखाते हैं, तो हमें ज़रूर अपने आप को जांचना चाहिए और परमेश्वर के चरणों में आके बैठना है और परमेश्वर से पूछना है, प्रभु मुझ में क्या कमी है, क्या गलती है। जब इस तरीके से हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, जैसे भाई ने अभी सिखाया कि हमें पवित्र बनना है, तो पवित्र बनने का एक ही उद्देश्य है कि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हों तो निष्कलंक निर्दोष, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद।
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आजकल के आज के दिन के लिए, जो भाई डेनी ने जो हमें वचन दिया है, और ये वचन आज हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे भाई ने बताया कि हमें एक बार फिर से वचन के द्वारा उन्होंने सावधान रहने के लिए बोला है, हमारे जीवन के लिए एक चेतावनी है, सावधान। यदि हम किसी बड़े में अपना बंगले की तरफ जाएंगे, वहाँ गेट पर लिखा रहता है बीवेयर ऑफ डॉग, तो हम तुरंत सावधान हो जाते हैं और इधर उधर देखते हैं कहीं आ तो नहीं रहे। तो आज भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी तरह से का वचन है सावधान, तो शायद हमने बहुत ही हल्के से लिया रहेगा, लेकिन आज हमें हल्के से लेने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत हमें सावधान होना है कि ये वचन क्यों आ रहा है। सावधान होना हमारे हृदय से बातें करता है, सावधान हमारे मन से बात करता है कि हम कहाँ सावधान नहीं है। अगर यदि हम असावधान हो गए, हमारा मन इधर उधर भटक गया, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और ये सावधान का शब्द एक ही बार नहीं आया है, बाइबल में बहुत सारे अध्यायों में हमें सावधान सावधान करके बताया गया है, सावधान। तो भी आज हम लोग सावधान नहीं हो रहे, हमारा मन शायद कहीं और भटक रहा है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसका 22 6 से हम 7 तक पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास की योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। यहाँ पर देखते हैं कि यीशु का पुनरागमन का जो वचन आज हमें मिला है, तो पवित्र वचन कहता है कि धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। यदि हम इस बात को आज नहीं मानेंगे, यदि आज हम सावधान नहीं होंगे, तो परमेश्वर हमें धन्य कहेगा क्या? हमें धन्य बिल्कुल नहीं बोलेगा वो। क्यों? क्योंकि हमने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। हम उसकी नजरों में अयोग्य ठहरेंगे। तो क्या हमें अयोग्य बनना है? नहीं, हमें इस वचन पर ध्यान देना है। आज हमें सावधान रहने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो आज हमें जरूरत है, जैसे यहाँ पर 22 का 14वां वचन कहता है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो धन्य वे हैं जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। आज हमें अपने आत्मिक वस्त्रों को धोने की बहुत जरूरत है। हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। ये संसार है, संसार में हम टेढ़े और हटीले जातियों के बीच में रहते हैं और वो हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत हो गए तो वो अपनी ओर हमें खींचते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सावधान। तो आज हमें सावधान रहना अत्यंत जरूरी हो गया है। मत्ती 6 में हम देखते हैं, मत्ती 6 में यहाँ पे भी हमें अच्छी तरह से सिखाया गया है। वहाँ पर पहला वचन कहता है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यहाँ पे भी हमें सावधान रहने के लिए बोल रहा है। यदि हम मनुष्य को दिखाने के लिए काम करेंगे या उनसे कंप्रोमाइज़ करके उनके जैसा हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है आधा आधा 50-50 करेंगे, तो वहाँ पे भी हमें स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पा पाएंगे। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि हमें सावधान रहने की अत्यंत ज़रूरत है। मत्ती 6 में हमें किस तरह से प्रार्थना करना है यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। हमें कपटियों के नए प्रार्थना नहीं करना है। हमें यहाँ पर दान के बारे में सिखाया है कि हमारा दान इस तरह का होना चाहिए कोई हमारा बायां हाथ भी ना देखने पाए। यहाँ पे उपास के बारे में बहुत सारी बातें हमें सिखाई हैं। ये हमें स्वर्गीय जीवन के लिए पूरी बातें हमें सिखाई है। लेकिन इस वचन में मुझे एक वचन बहुत ही मेरे मन को लगा, 6:21 मत्ती 6 उसका 21 वचन कहता है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ये वचन मुझे कल मिला था कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम धन कमाने की होड़ में ज़्यादा लगे हैं। हम सावधान की जगह धन कमाने के सावधान में ज़्यादा लगे हैं। कहाँ से हमको धन मिलेगा? तो धन के साथ साथ हमारा मन वहीं पर लगा हुआ रहता है। और आज हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, विज्ञापन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लुभाने वाली चीज़ें आ रही हैं, और जिनको जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की भी हम लालसा करते हैं कि नहीं ये मेरे घर में बहुत ज़रूरी है, और हम उसे खरीदने की चिंता में लग जाते हैं। हम परमेश्वर का वचन ठीक है करके साइड में रखते हैं और सांसारिक वस्तुओं की खोज में हम लोग ज़्यादा बने हुए रहते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, और उसकी चिंता में हम ज़्यादा लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्रस हमें यही कहता है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो हमारा मन कहाँ पर है? आज हमें ये सोचने वाली बात है। मुझे याद है कि जब हम लोग अविश्वासी थे तो मेरे पेरेंट्स मुझसे बोलते थे कि जब भी मैं उनसे खिलौने लेने के लिए जिद करता था, हालांकि मुझे जो मेरी इच्छा थी मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन मैं हमेशा जिद करता था कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे ये बस चाहिए, ट्रक चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें थी, तो मेरे पेरेंट्स लोग मुझे डांटते थे कि नहीं, आप अपना मन यहाँ पे मत लगाओ, अपना मन पढ़ाई पे लगाओ। उन्हें नहीं मालूम था कि हमारा अपना मन कहाँ लगाना है। वो बोलते कि नहीं, पढ़ाई में मन लगाना है, अच्छी बात है, हमें पढ़ाई में मन लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मन हमारा कहाँ लगना चाहिए। आज पत्रस भी हमारे यही हमें सिखा रहा है कि हमारा मन किन चीज़ों पर जरूरी होना चाहिए। आज परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह हमें सावधान रहने के लिए बोल रहा है कि सावधान, तो ये हृदय से आज हमारे हृदय से बातें हुई है, मेरे हृदय से बातें हुई है कि सावधान, कि मेरा मन कहाँ है, कि परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, हमारे हृदयों को जांचता है। तो आज हम पूरी रीति से परमेश्वर की ओर 100% परमेश्वर की ओर फिरेंगे और अपना मन परमेश्वर की ओर ही लगाएंगे। यहाँ पर लिखा है सातवां मती 7 का उसका 13 वचन है, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो ये वचन मेरे हृदय को ऐसा लगता है कि क्या थोड़े में मैं हूँ क्या, क्योंकि चौड़े रास्ते में तो हम लोग लालसा करते हैं कि हमें कोई तकलीफ ना हो, बहुत आसानी से हम लोग उस रास्ते में पहुंच जाएं, लेकिन परमेश्वर का मार्ग मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत सख्त है, बहुत छोटा है, नेरो है, उसमें हमें होकर चलना है। इसके लिए हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगें कि प्रभु आज आपने हमें सावधान रहने के लिए कहा है और इसमें हमें चलने के लिए हम सबकी सहायता और मदद कर, ताकि प्रभु हम धन्य ठहराए जाएं तेरे मुख से। प्रेज़ द लॉर्ड।
एज वी हर्ड टुडे अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, वी शुड बी रेडी फॉर दैट।
और जैसे हमने यीशु के दूसरे आगमन के बारे में सुना और उसके लिए हमें तैयार होना है।
देयर इज वन मोर थिंग दैट इट इज नॉट लाइक इट इज देयर इज अ मोटिवेशन फॉर बीइंग रेडी फॉर द कमिंग ऑफ जीसस।
और जब यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने के लिए एक प्रेरणा की हमें जरूरत पड़ती है।
इफ देयर इज नो मोटिवेशन इट विल बी वेरी हैवी एंड डिफिकल्ट।
और यदि प्रोत्साहन या प्रेरणा अगर नहीं तो वो चीज हमारे लिए बहुत ही तकलीफ या बहुत ही कठिन हो जाएगी।
And that motivation is what Jesus did for us.
और वो प्रोत्साहन ये है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है।
So we are coming to the Lord's table now.
और अब हम परमेश्वर के मेज में भाग लेते हैं।
So when Jesus was with his disciples, when he was just going to the cross in some time.
और यीशु मसीह कुछ थोड़े समय में ही उस क्रूस के ऊपर क्रूसित होने वाला था, उसके शिष्यों के साथ जब वो आगे जा बढ़ रहा था।
Jesus spoke about in Luke 22.
लुका 22 के अंदर यीशु मसीह ने कहा।
In the 19th verse.
19 वचन.
It says, when he had taken some bread and given thanks, he broke it and gave it to them.
और फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको दिया।
And then it says, saying, this is my body which is given for you.
और उनसे कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है।
Do this in remembrance of me.
और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
And in the same way he took the cup after they had eaten, saying, this cup which is poured out for you is a new covenant in my blood.
और इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है।
Jesus said, my body is given for you completely.
और यीशु मसीह कहता है कि मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से मैं दे देता हूँ।
And then he said, the cup which is poured out for you.
और वो कटोरा जो पूरी तरह से तुम्हारे लिए बहाया जाता है।
Jesus poured himself out completely for us.
और यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरह से हमारे लिए बहा दिया।
There is no one in the world who has poured himself out completely for us except for that what Jesus did for us.
और यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया उसको छोड़कर इस संसार के अंदर किसी ने भी हमारे लिए इस प्रकार अपने आप को नहीं दिया है।
We all receive love from our parents, but it's all selfish. The love that Jesus had for us is much beyond that. We need to meditate on his love for us.
और हम जो माता पिता से प्रेम को स्वीकार करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, लेकिन जो परमेश्वर जो प्रेम होता है उसके ऊपर हमको मनन करना है, वो उससे भी बढ़कर है।
When Jesus says about the new covenant in his blood,
और यीशु मसीह ने जब अब कहा कि नई वाचा के अंदर ये मेरा लहू उस ये कहा।
Matthew says it differently, little different.
और मत्ती के अंदर इसको अलग प्रकार से लिखा गया है।
It's written, my blood for this, in Matthew 26:28.
मत्ती 26 उसका 28 वचन।
It says, this is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sin.
क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है.
सो दिस इज नॉट लाइक एनी अदर ब्लड लाइक इन द ओल्ड टेस्टमेंट वी हैड द ब्लड ऑफ बुल्स एंड गोट्स. दैट्स नॉट एट ऑल व्हाट द ब्लड ऑफ जीसस इज. इट्स टोटली डिफरेंट.
और यीशु मसीह का लहू वो पुराने वाचा के अंदर जो लहू था जो बैलों का या जो भेड़ों का जो लहू उससे बहुत ही अलग प्रकार का यह लहू है.
इट इज इमेंसली प्रेशियस. वी शुड रियली अंडरस्टैंड इट.
ये बहुत ही पूरी तरह से बहुत ही बहुमूल्य है. इसको हमें समझना है.
वी शुड नेवर एवर टेक द ब्लड ऑफ जीसस एज अ कॉमन थिंग.
और कभी भी यीशु के लहू को हमको सामान्य हल्के से नहीं लेना है.
इट्स रिटन दैट इट वॉज पोर्ड आउट फॉर अ फॉरगिवनेस. सो अ क्लेंजिंग इन आवर हार्ट्स सो मच दैट द गिल्ट ऑफ द सिन इज टेकन अवे इज बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस.
और ये हमारे पापों की क्षमा के लिए हमारे हृदय के अंदर जो पाप का दोष पाया जाता है उसको पूरी तरह से ये हटा देता है.
And one more thing that happened on the cross is when Jesus was on the cross.
और एक और बार क्रूस के ऊपर जो हुई जो यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर था.
We know that he suffered all the agony and pain that that people mocked at him and laughed at him and teased him.
और वहाँ पर यीशु को हम जानते बहुत सारी वेदनाओं को दुख को उसने सहा जा लोग उसको मजाक कर रहे थे ठट्ठा कर रहे थे उसका.
He was beaten up very badly with the whips and all.
और बहुत ही बुरी तरह से चाबुक से उसको मारा गया.
Those are all external pain and that was painful enough.
और ये बाहरी तौर से उसको बहुत ही चोट पहुंचा और ये बहुत ही दर्दनाक भी था.
But the pain that he suffered in his spirit was unimaginably more. We need to really meditate on how much he suffered in the spirit.
और उसकी आत्मा के अंदर में जो उसने दुख को उठाया उसको बहुत ही वो बहुत ही उसकी वेदना बहुत ज्यादा थी उसको समझने की कोशिश हमको करना है.
In Romans 5:9,
रोमियो 5:9 में लिखा है,
It says, much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him.
So जबकि अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे.
The wrath of God was put completely on Jesus when he was on the cross.
और जब यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर था परमेश्वर का सारा क्रोध उसके ऊपर लाद दिया गया.
We are so fortunate that we will not experience that wrath.
और हम कितने सौभाग्य के लोग हैं कि हमें वो क्रोध का सामना करने की जरूरत नहीं है.
It is not like the wrath that we have some anger against someone. It is nothing compared to what the wrath of God is. It's terrible.
और हमारा जो क्रोध होता है ये किसी व्यक्ति के लेकिन उसके तुलना के अंदर परमेश्वर का जो क्रोध वो बहुत ही भयानक.
Because God hates sin like anything. We don't understand it.
और हम इसको समझ नहीं पाते कि परमेश्वर पाप से कितना अधिक नफरत करता है.
And that is why Jesus, God had to send His only Son for us. God had to come down on earth for us.
और इस कारण से परमेश्वर को अपना इकलौता बेटा भेजना पड़ा. वो परमेश्वर खुद एक मनुष्य पुत्र बनकर आया.
And He suffered the pain of agony of the cross for my sin.
और मेरे पापों के कारण क्रूस की मृत्यु की उस वेदना को उसने उठाया.
Jesus himself says, remember this, remember what I have done for you.
और वो खुद कहता है कि इस चीज को जो मैंने किया उसको आप स्मरण करो.
When we go through life and when we don't remember this is not just when we have the Lord's table, but it is good to always in between just think about this, what you did for me, the price you paid.
और केवल जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तभी इस चीज को सोचना उतना ही लेकिन उसके दरमियान उसके बाद भी हम सोचते रहे कि प्रभु तूने मेरे लिए कितनी बड़ी कीमत को चुका उसको हम सोचते रहे.
Because only when we remember Jesus, the sacrifice of Jesus, then only we can be motivated to follow him. Otherwise, it is an empty thing.
और जब हम पर यीशु मसीह के बलिदान को याद करते रहेंगे तभी उसका अनुसरण करने के लिए हमको एक प्रोत्साहन प्राप्त करते हमको मिलेगा.
The most painful time that Jesus had on the cross was when on the cross for 3 hours the Father turned his face away from him.
और बहुत ही दर्दनाक जो समय यीशु मसीह के लिए उस क्रूस पर था 3 घंटे के लिए जब पिता ने अपना मुख यीशु मसीह से पूरी तरह से मोड़ लिया.
We know that maybe or some for some I don't know some some believers who are come from unbelievers who became believers the world from Hindus they have come to and their parents also betray them and send them away.
और हो सकता है कि जो अविश्वासी जो पहले थे हिंदू थे वो फिर विश्वास में आए. और कई बार होता है कि उनके माता पिता पूरी तरह से उनको त्याग देते हैं छोड़ देते हैं.
But what Jesus faced on the cross is a million times more than that because he was separated from his father.
और यहाँ पर यीशु मसीह ने जो अनुभव किया है वो उससे बहुत ही सैकड़ों गुना ज्यादा है. उसने पूरी तरह से पिता से एक अलगाव को वहां पर अनुभव किया.
Because the pain that the person who is coming from a Hindu background into Christianity, into believing God, Jesus, that person's betrayal is nothing because here Jesus, when Jesus was forsaken from the Father, it was the God never forsakes anyone on this earth. His love is on everyone.
और हम देखते हैं कि जैसे हमने तुलना किया कि जैसे एक हिंदू परिवार से कोई मसीह बनता है उसको जो छोड़ दिया है त्याग दिया जाता है, लेकिन उसकी तुलना जो अब हम करें यीशु मसीह का जो छोड़ा जाना त्यागा जाना बहुत ही बढ़कर है, क्योंकि यीशु मसीह किसी को भी त्यागता नहीं, परमेश्वर त्यागता नहीं, सबसे प्रेम करता है.
When human beings will leave us alone, we will be alone. No one is there with for us, but we still have God to pray out, to cry out to you.
और जब मनुष्य जाति जब हम अकेले हो जाते सब लोग को छोड़ देते, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध है ताकि हम उसको पुकार सके.
But Jesus was in a unique place where even Father, God himself left him. He was having no one. Even the people who were around him left him, and even God the Father left him.
लेकिन यीशु मसीह ऐसी एक जगह पर आ गया जहां पर लोगों ने तो उसको छोड़ दिया, लेकिन पिता जो उसका पिता जो परमेश्वर उसने भी उसको त्याग दिया.
The earth that he created couldn't bear it. And there was darkness.
और जो पृथ्वी जो उसने बनाए उसको सह नहीं सका, वहां पर अंधकार हो गया.
We should have been in that place. We'll know the pain that it is so much painful.
और हमको उस दर्द की जगह पर होकर जानना चाहिए कितना दर्दनाक वो होगा.
We need to ask the Lord to reveal this great thing that Jesus did for us. We really need to meditate on that.
और परमेश्वर से मैं मांगना है कि प्रभु हम पर इस बात को, इस महान तथ्य और बात को हम पर प्रदर्शित करे और इस पर मनन कर सके.
When Jesus after the 3 hours was over, when he was forsaken, he cried out, my God, why have you forsaken me?
और तीन बार जब उसको पूरी तरह से त्याग दिया गया तो अंत में वो पुकारता है, हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया?
Jesus didn't even sin even once in his thoughts, in his mind, in his motives, in his intentions, nothing. It was perfect.
और यीशु मसीह ने अपने इरादों में, अपने मन में, विचारों में कहीं पर भी एक भी पाप नहीं किया था, पूरी तरह से वो सिद्ध व्यक्ति था.
But just because of my sin, that is what was put on him completely.
और वो केवल मेरे ही पापों के कारण पूरी तरह से वो सारे पाप उस पर लाद दिए गए.
He suffered the pain of hell on the cross.
और उस क्रूस के ऊपर उसने उस नर्क के दुख और वेदना को उठाया.
I really pray that Lord, I pray also sometimes that Lord, really reveal your love for me on the cross, how much you loved me.
और मैं कई बार इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ कि पिता सच में प्रभु जी कि तूने कितना उस क्रूस के ऊपर मुझसे प्रेम किया, उस प्रेम को मुझके मेरे ऊपर प्रकट कर.
We don't know much, we know very less, very little we know about.
और हम बहुत ही कम जानते, हम ज्यादा नहीं जानते इस प्यार के बारे में.
So we need to ask God, Lord, reveal your love to me on the cross, how much you loved me.
और हमें मांगना है कि प्रभु इस क्रूस के ऊपर तूने कितना मुझसे अधिक प्रेम किया वो मुझ पर प्रकट कर.
When Jesus cried out, Jesus was always answered. His prayers were always answered.
और यीशु मसीह की प्रार्थनाएं हमेशा उत्तर दी जाती थी.
But when he was on the cross, he prayed that he asked God, why you forsaken me? He didn't receive any reply.
और लेकिन जब क्रूस के ऊपर उसने कहा कि पिता है परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तो उसको कोई उत्तर नहीं मिला परमेश्वर से.
Because God had forsaken him, there is no other way that I will be saved.
और कोई रास्ता नहीं था जिससे कि मेरा उद्धार हो सके.
इन व्हेन यू गो टू साम्स 22
और भजन संहिता 22 के अंदर जब हम जाते हैं,
इट सेज इन द फर्स्ट वर्स, वी नो दैट इज व्हाट जीसस कोटेड इन द व्हेन ही सेड माय गॉड व्हाई हैव फॉरसेकन मी.
और यहां पर यीशु मसीह ने जो कथन कहा कि मेरे परमेश्वर क्यों त्याग दिया, वहां पर लिखा गया है.
एंड देन द सेकंड वर्स इज ओ माय गॉड आई क्राई बाय डे बट यू डू नॉट आंसर एंड बाय नाइट आई हैव नो रेस्ट.
और उसके दूसरे भाग में यहां लिखा है कि मेरे परमेश्वर मैं दिन को पुकारता हूं तू मुझे उत्तर नहीं देता, रात को भी मैं चुप नहीं रहता.
एंड फोर्थ वर्स इज इन यू आवर फादर्स ट्रस्टेड दे ट्रस्टेड एंड यू डिलीवर्ड देम.
और हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते हुए और तू उन्हें छुड़ाता था.
टू फिफ्थ वर्स टू यू दे क्राइड एंड वर डिलीवर्ड.
उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया.
To you they trusted and were not disappointed.
और वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित नहीं हुए.
But I am a worm and not a man.
और मैं तो एक कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं.
A reproach of men and despised by the people.
और मनुष्य में मेरी नामधराई और लोगों में मेरा अपमान होता है.
Imagine God from heaven coming down and becoming such a state, like he couldn't even say he became like a worm.
और सोच के देखिए कि परमेश्वर कैसे मनुष्य रूप धारण करके इस स्थान पर आ जाता है कि वो कहता है कि मैं कीड़े के सरीखा हूं.
And then it says in 7th verse, all who see me sneer at me.
और 7 वचन में कहता है सब जो मुझे देखते मेरा ठट्ठा करते हैं.
They wag their head.
और वो मेरे मेरे होंठ को बिचकाते हैं.
And then there it's 11th verse, be not far from me for trouble is near, for there is none to help.
और 11 वचन में कहता है कि मुझसे दूर न हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं है.
Then 14th verse, I am poured out like water.
14 वचन में जल की नाई में बह गया हूँ.
And all my bones are out of joint.
और सारी मेरी हड्डियां है जो जोड़ से उखड़ गए हैं.
Imagine the condition, like all the bones that Jesus had were out of joint.
और सोच के देखिए इस परिस्थिति को, उसकी सारी हड्डी जो जुड़ी हुई है वो सारी उखड़ गई है.
Even one bone, if it is out of joint, it's such painful thing. But all his bones were out of joint.
और यदि एक हड्डी भी हमारी जोड़ से उखड़ जाती है, कितना दर्द होता है. यहाँ पे लिखा है सारी हड्डियाँ उखड़ गई है पूरी तरह से.
My heart is like wax.
और मेरा हृदय मोम का सा हो गया है.
It is melted within me.
और मेरे भीतर वो पिघल गया है.
My strength is dried up like a potsherd.
और मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया हूँ.
My tongue cleaves to my jaws.
और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई है.
This is what Jesus suffered on the cross.
और ये चीजें जो यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर मेरे लिए सही है.
And then it says, 17th verse, I can count all my bones.
और 17 वचन में कहता है मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ.
When Jesus blood was shed, it was fully shed. There was not a drop of blood in his body.
और जब यीशु मसीह का लहू उस क्रूस के ऊपर पूरी तरह से बह गया, उसके शरीर में एक बूंद तक लहू नहीं बचा था. सब कुछ बहा दिया.
That is why we could count his bones. When a man's blood is completely drained out, then only bones can be seen.
और इसी प्रकार जब एक मनुष्य के शरीर में से सारा लहू जब निकाल दिया जाता है, तब उसकी हड्डियां दिख पाती है और उसको गिन सकते हैं आप.
What we see in the movie of Jesus is not correct, because there it is like a film star, like he doesn't look like that is not how Jesus looked when he was on the cross.
और यीशु मसीह का जो कोई मूवी बनाया गया उसके ऊपर जैसे जैसे वो उसको क्रूसित किया गया एक फिल्म स्टार की तरह, उस प्रकार वो नहीं था.
He couldn't even recognize it was Jesus. It was terrible. Like the look was terrible.
और इतना भयंकर उसका देखना उसका चेहरा था कि उसको कोई पहचान तक नहीं पाता.
But we know why he did that. It is for me, for my sin.
और हम जानते हैं वो उसने ऐसा क्यों हुआ अपने साथ, उसने ऐसा क्यों सहा, क्योंकि वो मेरे लिए सहा उसने.
Isaiah that the Lord was pleased to crush him.
और यशायाह के अंदर लिखा है कि परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि वो उसको कुचले.
And then in Isaiah 53:11 it says, as a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. 53:10.
और 53 का 10 में लिखा है, तो भी यहोवा की भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसके रोगी कर दिया, और जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब अपना वंश देखने पाएगा.
God sees Jesus and he is satisfied.
और जब परमेश्वर यीशु मसीह को इस प्रकार देखता है तो वो संतुष्ट होता है.
God see the wrath of God completely is on Jesus, and when it is done, he is satisfied. Jesus said, it is finished.
और जब परमेश्वर पूरी तरह से इस प्रकार परमेश्वर के क्रोध को यीशु मसीह पर देखता है, संतुष्ट होता है, वो कहता है सब कुछ पूरा हुआ.
We'll turn now to 1 Corinthians 11.
पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय.
Here Paul says about what he received from the Lord.
यहाँ पे पौलुस लिखता है कि उसने परमेश्वर से क्या प्राप्त किया है.
23 from 11 23
11 का 23 वचन से आगे
Paul was not even this was something he revealed. It was a revelation from God.
और ये पौलुस को परमेश्वर की ओर से एक प्रकाशन के रूप में ये बातें प्राप्त हुई.
Because he was not converted at that time.
और तब उसका रूपांतरण या वो बदलाव नहीं हुआ था.
And then it says in the night in which he was betrayed, he took bread.
और यहाँ पे वो लिखता है कि जब वो जिस रात वो पकड़वाया गया तब उसने रोटी ली.
एंड व्हेन ही हैड गिवन थैंक्स ही ब्रोक इट एंड सेड दिस इज माय बॉडी व्हिच इज फॉर यू.
और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा कि ये मेरे देह है तुम्हारे लिए.
सेम वे ही टुक द कप आल्सो आफ्टर सपर सेइंग दिस इज द न्यू कवेनेंट इन माय ब्लड. Do this as often as you drink it in remembrance of me.
और उसके बाद उसने कटोरा लिया, कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो.
For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes.
जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो.
So this is what we need to, it is a proclamation of the death of Jesus. We need to remember what is the reason for why we do this.
और ये यीशु मसीह का जो मृत्यु उसका प्रचार है, इस कारण से हम इसकी याद में इस बात को करते हैं.
But there are some conditions. Anyone cannot take this. We should not take it as a tradition. It should be taken seriously.
और ये कोई भी इसमें पाप ये इसमें भाग नहीं ले सकता, ये कोई रीति रिवाज है इस प्रकार नहीं, लेकिन कुछ शर्तें इसकी है.
It says in the 27th verse that whoever eats this bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord.
और 27 में लिखा है कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए उसके कटोरे से पिए वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा.
Unworthy manner, and that it explains in the next verse. A man must examine himself, and in so doing, he is to eat the bread and drink of the cup.
और इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी से खाए और इस कटोरे में से पिए.
How do I examine myself? I ask the Lord to show me if there is any sin in me. God shows me what is if there is anything wrong in me.
और मैं अपने आप को कैसे जांचता हूं, परमेश्वर मुझे बताता है कि मैं पूछता हूं कि प्रभु कोई मेरे क्षेत्र के जीवन के क्षेत्र के अंदर कहां कोई गलत है और मैं
माफ़ इट इज नॉट लाइक डिगिंग योर डिगिंग इनसाइड लाइक दैट नो बट गॉड शोज मी वेयर आई एम रॉन्ग
और मैं अपने आप में खोदता हूं इस प्रकार ने लेकिन परमेश्वर मुझे बताता है कि कहां मैं गलत हूं
एंड व्हेन ही शोज मी समथिंग आई एक्नॉलेज इट दैट इज हाउ आई एग्जामिन माय सेल्फ
और मैं अपने आप को इस प्रकार जांचता हूं कि जब वो कुछ मुझे बताता है तो मैं बताता है तब मैं उसको मान लेता हूं
इफ देयर इज एनी सिन इन मी दैट ही शोज मी नाउ आई नीड टू एक्नॉलेज इट एंड आस्क द लॉर्ड टू क्लेंस मी
और यदि परमेश्वर अभी कोई पाप मुझे दर्शाता है तो उसको मैं मान लेता हूं और मैं उससे कहता हूं कि उसे मुझे वो पूरी तरह से साफ करे
इफ देयर इज एन अनफॉरगिविंग एटीट्यूड towards someone I can tell now to Lord I want to forgive give me I am not able to forgive but give me grace to forgive that person
aur yadi abhi isi samay agar kisi ke prati hum maafi nahi de pa rahe parmeshwar se mange prabhu main maaf nahi kar pa raha mujhe is samay us vyakti ko maaf karne ke liye mujhe anugrah de
one of the condition of taking this is a clear conscience
aur ek dusri ye shart hai ki hamara ek shuddh vivek hona chahiye
should not take it with a we should have a clear conscience and if there is something to be settled we need to settle it immediately as soon as possible
और यदि हमारे कुछ चीजें ठीक करनी है और वो शुद्ध विवेक होने के लिए तो सबसे पहले हमें उन चीजों को ठीक करना है
इफ माई हार्ट इज हार्ड एंड आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ स्टेप देन इट इज बेटर नॉट टू टेक
और यदि मेरा हृदय बहुत कठोर है और मैं उस कदम को नहीं उठाना चाहता तो बेहतर यह है कि हम इसमें भाग न ले
आई डोंट वॉन्ट टू टेक इट टू शो अदर्स दैट आई एम इन द ग्रुप
और मैं इसलिए इसमें भाग नहीं लेना चाहता था कि मैं इस झुंड के अंदर दिखा सकूं कि मैं एक झुंड का भाग हूं
अदर्स विल नॉट नो दैट आई हैव समथिंग आई डोंट वांट टू शो इट इज बिफोर गॉड आई नीड टू बिकॉज आई हैव टू आंसर टू गॉड वन डे
और मैं लोगों को दिखाने के लिए इसमें भाग नहीं लेना चाहता लेकिन मैं परमेश्वर को उत्तरदायी हूं इसमें भाग लेने के लिए
And that is why it says in the 29th verse, he who eats and drinks judgment to himself if he does not judge the body rightly.
और 29 वचन में जो खाते पीते समय प्रभु की देख को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड को लाता है.
And if we take it in that way, then it says, many among you are weak and sick and number sleep.
और इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए हैं
बट इफ वी जज असल राइटली वी वुड नॉट बी जज
यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते
इफ आई जज माई सेल्फ राइटली गॉड विल नॉट जज मी
और यदि मैं सही रीति से अपने आप को जांचूंगा तो परमेश्वर भी मुझे नहीं न्याय करेगा
गॉड डजंट वांट टू जज अस ही वांट्स टू सेव अस
और परमेश्वर मेरा न्याय नहीं करना चाहता वो मुझको बचाना या उद्धार करना चाहता है
ही वांट्स टू हेल्प अस टू एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ गॉड द जॉय ऑफ The presence of God in our lives.
और वो चाहता है कि वो परमेश्वर का जो उपस्थिति का जो आनंद है वो निरंतर हमारे जीवन के अंदर हम उसका आनंद उठाते रहे.
He's very near to us. We just need to allow Him to work in our lives.
वो बहुत ही हमारे नजदीक है केवल हमें अनुमति देना है कि वो हमारे जीवन में काम करे.
There is one more thing in this in 1 Corinthians 10.
और पहला कुरिन्थी 10 अध्याय के अंदर और एक चीज है
16 and 17.
उसका 16 और 17 वचन.
Is not the cup of blessing which we bless as sharing in the blood of Christ? Is not the bread which we break sharing in the body of Christ?
और वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं क्या मसीह के लोहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं?
Since there is one bread, we who are many are one body, and for we all partake of the one bread.
और इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत से एक देह है.
Yes, this is what one more thing that this signifies is. We are all one. When we eat and drink, we signify that we say that we are all one.
और जैसे हम इसमें भाग लेते हैं, इसमें से खाते पीते हैं, तो हम ये दर्शाते कि हम सब एक है.
We all partake of that one bread that is before us.
और हमारे सामने जो एक रोटी, उसका हम भाग बनते हैं.
We, as we heard today, we pursue peace with everyone, whomever we have anything, we pursue peace and bring that unity in our lives.
और अगर किसी के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं, तो हम मेल मिलाप को खोजते और उस शांति को, एकता को हम लेकर आते हैं.
In the Acts of the Apostles, when they had this breaking of bread, they were all in one mind. They were doing it.
प्रेरितों के काम के अंदर जब प्रेरित इस प्रकार से जब रोटी को तोड़ते थे, वो एक मन के हो जाते थे.
So we need to pray to Lord, bring that unity, the spirit of unity in our midst, that we know that we are one body in Christ.
और प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे मध्य में एकता की आत्मा को ला, ताकि हम ये जान सके कि हम मसीह की एक देह है.
So when we take part in this, we need to remember a few things.
और जैसे इसमें भाग लेते हैं, तो कुछ चीजों को जो हमें याद कर रही है, स्मरण करना है.
First and foremost is I need to be born again.
पहली चीज, पहली शर्त जो है कि मुझे मेरा पहला नया जन्म होना चाहिए.
वी कैनॉट टेक पार्ट इन दिस इफ यू आर नॉट बॉर्न अगेन. दैट्स वेरी वेरी प्राइमरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
बहुत ही प्राथमिक, बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त यह है कि हमारा हमें नया जन्म प्राप्त होना चाहिए हमारा.
द सेकेंड इज दैट एज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड बाई जीसस हिमसेल्फ कमांडेड दैट वी आर बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ द in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit.
और जैसे पवित्र शास्त्र के अंदर यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है कि यीशु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा लेना है.
The third is that I desire to live with a clear conscience with God and man constantly.
और तीसरी चीज ये है कि हमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों के सामने एक शुद्ध विवेक के साथ निरंतर जीने की है.
एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वांट टू ग्रो इन दैट लाइफ.
और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस जीवन के क्षेत्र के अंदर मैं बढ़ना चाहता हूं.
इफ देयर इज एनी एरिया दैट नीड टू बी सेटल्ड वी कैन टेल गॉड लॉर्ड आई विल सेटल इट एंड देन वी कैन टेक पार्ट.
और अगर कोई क्षेत्र है कि जो जिस चीज को ठीक करना है परमेश्वर से कहे प्रभु मैं इस चीज को इस क्षेत्र को ठीक करूंगा और उसमें भाग ले सकते हैं.
May the Lord help us to take this in a right way.
परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इसमें हम भाग एक सही रीति से ले.
In the Corinthians church, they didn't take it in the right way. They were fighting. There was a lot of problems in that church.
और कुरिन्थी की कलीसिया थी, उन्होंने ठीक रीति से इसमें भाग नहीं लिया. बहुत सारे झगड़े उनके बीच में थे.
That is why Paul had to warn them and tell them why we are taking this.
और इसलिए उनको सचेत करना पड़ा कि क्यों हमें इस चीज को लेना है इसने.
May God help us.
परमेश्वर हमारी सहायता करे.
And pray.
आइए प्रार्थना करें. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. सुने वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचना चाहते हैं प्रभु जी. प्रभु हम अपने आप को जांचना किसी और का न्याय नहीं करना चाहते प्रभु. या पिता हमारे प्रिय लोगों का नहीं प्रभु. मैं खुद का अपना न्याय करना चाहता हूं प्रभु. आज ऐसी कोई भी चीज़ प्रभु परमेश्वर पाई जाती है पिता प्रभु जी, परमेश्वर पूरी तरह से आप उसे दूर करें प्रभु. हम प्रभु मान लेते हैं पिता प्रभु कि हाँ प्रभु हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही नहीं है पिता. आपके वचन के अनुसार हम ढिटाई करने वाले, कई बार हम बलवा करते हैं पिता. आज हम मांगते हैं प्रभु जी हमें पूरी तरह से आप साफ करें अपने लहू से प्रभु. बड़ा कीमती वो लहू हमने सुना प्रभु. एक एक हड्डी आपकी उखाड़ दी गई प्रभु जी. लहू का एक एक बूंद आपने हमारे लिए बहा दिया प्रभु. एक बड़ी कीमत चुकाई, कोई मामूली कीमत नहीं. बड़ा वो प्रेम है प्रभु जी. आज हमें पवित्र कर पिता, गंभीरता के साथ पिता प्रभु जी. एक पिता प्रभु जी गंभीर हृदय के साथ पिता, पश्चाताप के साथ प्रभु जी इसमें भाग लेने की हमारी मदद कर पिता. ऐसी कोई भी बात किसी मनुष्य के विरोध में, आपके वचन और आपके प्रभु परमेश्वर आपकी आज्ञा के विरोध में प्रभु हमें माफ करे पिता. अपने लहू से आज धोकर शुद्ध करे हमारे, खास उस विवेक को सिद्ध करे पिता प्रभु जी. एक पवित्र शुद्ध विवेक हमें दीजिए पिता, ताकि इसमें जब हम भाग लेते हैं एक हियाव के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एकता की आत्मा में प्रभु जी इसमें हम भाग ले सके. ऐसा अभिषेक हम सबों पर होने दीजिए प्रभु. हम चाहते कि पिता प्रभु अनुचित रीति से नहीं प्रभु जी, लेकिन सही रीति से आपके उस बलिदान को स्मरण करते हुए हम इसमें भाग लेते हैं पिता. हम सबों पर आपका अभिषेक उंडेलिए पिता, ताकि उस संगति में हम बने रह सके, एकता में पिता इसमें भाग ले सके. हम सबों की मदद करे प्रभु. धन्यवाद. प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं.